दूसरा सैमुअल अध्याय 15 पद 2 से लेकर 6 तक। और अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुदाई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशलोम उसको पुकार के पूछता था, तो किस नगर से आता है? और वो कहता था कि तेरा दास इसराइल के फलाने गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था कि सुन, तेरा पक्ष तो ठीक और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरे सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था कि भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, कि जितने मुकदमा वाले होते हैं वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता था। अबशलोम एक चलाक राजनीतिज्ञ था। वो लोगों को चूमता था और वही बातें कहता था जो लोग सुनना चाहते थे। ओह, कितने शर्म की बात है कि मुझे इस स्थान पर नहीं रखा गया, वरना मैं तुम्हारी सहायता कर सकता था। ओह, अगर मैं इस स्थिति में होता तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता था। ये बड़े दुख की बात है कि मेरा पिता बहुत व्यस्त है, उनके पास लोगों के लिए समय नहीं है। ओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? दूसरा सैमुअल 15 अध्याय पद 7 से लेकर 12 तक। 4 वर्ष के बीतने पर अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है। तेरा दास तो जब आराम के गशूर में रहता था, तब ये कहकर यहोवा की मन्नत मानी कि यदि यहोवा मुझे सचमुच यरूशलेम को लौटा ले जाए तो मैं यहोवा की उपासना करूंगा। राजा ने कहा, कुशल क्षेम से जा, और वो चलकर हेब्रोन को गया। तब अबशलोम ने इसराइल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे कि जब नरसिंगे का शब्द तुमको सुने पड़े, तब कहना कि अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ, और अबशलोम के संग 200 देवताहारी यरूशलेम से गए। वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ, तब उसने गिलोवासी अहितोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वो अपने नगर गिलो से आए, और राजद्रोह गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। भजन संहिता 55 में दाऊद अपने मित्र अहितोपेल से बिछड़ने को व्यक्त करता है। आइए भजन संहिता 55 में दाऊद के दिल के मर्म को पढ़े, जो अहितोपेल के वियोग में उसने लिखा है, क्योंकि वो अबशलोम के साथ चला गया है। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़, मेरी ओर ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वे मुझ पर दोष आरोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है, और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते, तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देखो तो फिर मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वे उसकी शहर पना पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पात होता है। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा डाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसके चौक से दूर नहीं होते। ये अहितोपेल के बारे में उसका शोक विलाप है। जो मेरी नामधराई करता है वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। यहां दाऊद उनके लिए प्रतिशोध या बदले की प्रार्थना करता है जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात और धोखा किया है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, दाऊद का साहस या उत्साह समाप्त हो चुका था। अपने आप को अबशलोम और उसकी सेना से बचने के लिए वो अपनी सेना को तैयार नहीं कर रहा है। वो यरूशलेम शहर को असुरक्षित छोड़कर अपने कुछ विश्वासी साथियों के साथ जैतून के पहाड़ के ऊपर जंगल में भाग गया। वे किद्रोन के नाले के पास थे और उन सब ने अपना अपना सिर ढाक रखा था और वे सब रो रहे थे। वो कितना दुखद और दरुण दृश्य होगा। ये महान योद्धा अब डर कर भाग रहा था, वो लड़ने के लिए खड़ा नहीं हो रहा था। दूसरा सैमुअल 15:31-32 पद। तब दाऊद को ये समाचार मिला कि अबशलोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहितोपेल है। दाऊद ने कहा, हे यहोवा, अहितोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। तब दाऊद चोटी तक पहुंचा जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे। तब एरेकी हुशै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए उससे मिलने को आया। वो दाऊद का ही एक सलाहकार था। दाऊद ने उससे कहा, तुम वापस यरूशलेम को जाओ, हो सकता है कि वहां रहकर तुम अहितोपेल की सम्मति को निष्फल कर सको। अब यहां दाऊद अबशलोम के उद्देश्यों को निष्फल करने के लिए अपने आदमियों को लगाता है। अध्याय 15:35। और क्या वहां तेरे संग सादोक और अब्यातार याजक ना रहेंगे? इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और अब्यातार याजकों को बताया करना। मेरे लिए यहां ये दिलचस्प बात यह है कि दाऊद अपना सारा मुकदमा परमेश्वर को समर्पित कर देता है। अगर परमेश्वर मुझे वापस ले आना चाहे तो तुम जानते हो परमेश्वर मुझे वापस ले आएगा। अगर परमेश्वर मेरी सहायता करना चाहे तो परमेश्वर मेरी मदद करेगा, परंतु वो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर रहा है। वो स्वयं के लिए नहीं लड़ रहा है। वो एक टूटा हुआ मनुष्य है और वो अपनी परिस्थिति को परमेश्वर के हाथों में संपूर्ण रीति से समर्पित करता है, क्योंकि उसके पापों के कारण की गई भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। नाथान ने कहा था, तुम्हारा बेटा तुम्हारा विरोध विद्रोह करेगा। वो इसे परमेश्वर के न्याय के रूप में देख रहा था और वो इसे स्वीकार कर रहा था। वो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में और उसके न्याय के निमित्त जो परमेश्वर उसके ऊपर लाया था पूरी तरह से समर्पित कर देता है।